वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की प्रातःकालीन की इस कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से स्कंद 6 अध्याय 3 यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। इधर वाला स्पीकर कहाँ गया? अच्छा, श्लोक क्रमांक 29 बहुत ही रोचक श्लोक है। भगवान के नाम की महिमा है तो हम लोग उच्चारण करते हैं।
जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम धेयम्। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्। कृष्णाय नो नमति यच्चिरेकदापि। तानानयत्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान्।
शब्दार्थ जिह्वा जीव न नहीं वक्ति कीर्तन करती है भगवत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुण अलौकिक गुण नाम तथा पवित्र नाम का ध्येयम् प्रदान करते हुए। चेतः हृदय च भी न नहीं स्मरति स्मरण करता है तत् उसके चरणरविंदम चरण कमलों को। कृष्णाय भगवान कृष्ण को मंदिर में उनके अर्चा विग्रह के माध्यम से। नो नहीं नमति झुकता है यत् जिसका शिरः सिर एकदापि एक बार भी तान उनको आनयध्वम मेरे समक्ष ले आओ। असतः अभक्तों को अकृत न करने वाले विष्णु कृत्यान भगवान विष्णु के प्रति कर्तव्य। अनुवाद व तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद हे मेरे प्यारे सेवकों, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना जिनकी जीभ कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन नहीं करती, जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करते तथा जिनके सिर एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुकते। मेरे पास उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति अपने उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करते जो मानव जीवन के एकमात्र कर्तव्य हैं। ऐसे सभी मूर्खों तथा धूर्तों को मेरे पास ले आना। ओम ज्ञान तिम्रांतस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासिनी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम लोग चर्चा करेंगे जब से हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ रहे हैं, हम ऐसे पढ़ते जाएंगे और चर्चा करते जाएंगे, इसलिए मैंने मंगलाचरण पहले बोला। और फिर मैं प्रयास करूँगा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील जीव गोस्वामी जी की टीका की चर्चा हम इस श्लोक पर करेंगे। तात्पर्य इस श्लोक में विष्णु कृत्यान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम धर्म भी इसी प्रयोजन के लिए है। जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है, वर्णाश्रमाचरावत वर्णाश्रम आचारवता पुरुषेण परह कुमान विष्णु आराधते पंथा नान्य तत्तोष कारणन कारणम। मानव समाज इसीलिए है कि वह कठोरता पूर्वक उस वर्णाश्रम धर्म का पालन करे जो समाज को चार सामाजिक विभागों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र और चार आध्यात्मिक विभागों ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास में विभक्त करता है। वर्णाश्रम धर्म मनुष्य को भगवान विष्णु के निकटतर लाता है, जो कि मानव समाज का एकमात्र असली लक्ष्य है। पहले इसको हम समझ लेते हैं प्रभुपाद जी इस बात को क्यों बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे विष्णु कृत्यान शब्द पे फोकस कर रहे हैं कि मानवों को इंसानों को भगवान विष्णु के लिए कुछ कृत्य कुछ करना चाहिए। इसको जीव गोस्वामी जी भी बोलते हैं, या तो पूर्ण रूप से भक्ति करनी चाहिए या फिर कुछ अंश मात्र में तो भक्ति किया रहना चाहिए। उसके जो धार्मिक कर्मकांड हैं या कुछ भी अनुष्ठान हैं उसमें भगवान विष्णु की भक्ति का समावेश जरूर होना चाहिए। इसी बात को शिला प्रभुपाद यहाँ पर समझा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्णाश्रम धर्म किस प्रकार से हमारी सहायता करता है, क्योंकि जीव अनादि है और अनादि काल से उसमें विभिन्न प्रकार के संस्कार हैं, उस कारण से उसका स्वभाव होता है क्षत्रिय का स्वभाव होता है ब्राह्मण का स्वभाव होता है। तो वर्णाश्रम धर्म यह सिखाता है कि किस प्रकार से अपने स्वभाव को हम भगवान की सेवा में नियोजित कर सकते हैं। यह भी सिखाता है किस प्रकार से निष्काम कर्म करे और उससे उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो। इसे हम भगवद्गीता से सीखते हैं, कर्मयोग सीखते हैं। तो वर्णाश्रम के द्वारा हर व्यक्ति की जो योग्यता है उसके अनुसार वह अपने आप अपनी सेवा को भगवान को समर्पित कर सकता है। इसको हम लोग दिव्य दैवी और आसुरी स्वभाव में भी गीता में पढ़ते हैं। और श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी बड़ी सुंदर टीका करते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति का जो स्वभाव है अगर उसका ही वो अनुशीलन कर रहा है तो उसके लिए वही दिव्य है। अगर कोई शूद्र है तो परिचर्या अगर उसका स्वभाव है तो ईमानदारी से कर रहा है तो उसके लिए वही दिव्य है। जैसे कि हम लोग सुनते हैं क्षत्रिय अगर युद्ध में मरता है धर्म युद्ध में तो वह सूर्यलोक की प्राप्ति करता है और वही स्थान एक सन्यासी भी प्राप्त करता है। तो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पे सिखा रहे हैं कि वर्णाश्रम के द्वारा हम अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करना सीखते हैं। ये माध्यम है सामान्य सभी लोगों को भगवान की भक्ति में लगाने के लिए। सॉफ्टवेयर जॉब करके भक्ति करना बहुत मुश्किल होता है, या ऑयल फील्ड में काम करके व्यक्ति को बहुत भक्ति करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि कर्म योग तो होता है लेकिन विकर्म योग कुछ नहीं होता। तो इसलिए वर्णाश्रम के द्वारा व्यक्ति पुण्यात्मक जीवन जीता है वो आधार बनता है आगे जाकर भगवान विष्णु की भक्ति करने का, और वैसे भी उसमें कर्म कृष्ण को समर्पित होते हैं। तो ये बात प्रभुपाद बता रहे हैं। नते विदुह स्वार्थ गतिम ही विष्णु, ये बात प्रभुपाद यहाँ पे इसको लेके जा रहे हैं कि मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य जो है वह भगवान विष्णु की प्राप्ति करना है, लेकिन लोग नहीं जानते हैं इसलिए वो असत रहते हैं, मतलब भौतिकतावादी रहते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश लोग ये नहीं जानते कि उनका स्वार्थ भगवत धाम वापस जाने में है या भगवान विष्णु के पास पहुंचने में है। और ये दुर्भाग्य का निर्माण उन लोगों किसके द्वारा होता है जिनके पास ये ज्ञान है और प्रचार नहीं करते। समझ में? इस दुर्भाग्य का निर्माण उन लोगों के द्वारा होता है जिनके पास ये ज्ञान है और दूसरों को नहीं देते। आज एक भक्त ने मुझसे प्रश्न किया कि जब हम भक्ति में आते हैं तो अन्यों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। हमने कहा अन्य से श्रेष्ठ नहीं, अन्य से अधिक सौभाग्यशाली मानना चाहिए अपने आप को, क्योंकि हम तो बहुत पापी जीवन जी रहे थे, अज्ञान में जी रहे थे। भक्तों ने कृपा किया, अपना हाथ बढ़ाया, हमें सागर से बाहर निकाला, बोट में बिठाया, और बिठाने के बाद भी सहन कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से हर भक्त का कर्तव्य है, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आप हमारी कोई योग्यता नहीं थी, कोई नहीं कह सकता कि मैं बचपन से जब उठा तो मम्मी पापा की जगह हरे कृष्ण बोलो, कोई नहीं। आप किसी भक्त ने हमारी मदद करी है तो इस दुर्भाग्य का कारण हम हैं। अगर हम किसी को भक्ति के में प्रचार नहीं कर रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहे हैं, तो हम उस भक्ति के दुर्भाग्य का कारण है। बुरा मत मानेगा लेकिन है, हम ही लोग हैं, क्योंकि हम नहीं बताएंगे तो कोई नहीं बताएगा, हम किताब नहीं देंगे तो कोई नहीं देगा। एक वैष्णव की भावना होनी चाहिए। तो बेचारे वो नहीं जानते हैं तो हमें उन्हें बताना चाहिए, और वो जानना चाहते भी नहीं है लेकिन फिर भी मैं बताना चाहिए। जैसे कि हिरण्यकश्यप भागवत क्लास में नहीं आना चाह रहा था, फिर भी प्रहलाद महाराज उपदेश दिए थे। क्यों नहीं जाना चाहते हैं तो प्रभुपाद बता रहे हैं, दुराशया ये बहिरर्थ माना है, उनका आशय, उनका हृदय, उनका चित्त दूषित है, इसलिए भगवान से कोई मतलब नहीं, ऐसा सोचते हैं। विपरीत इसके वे केवल मोहग्रस्त रहते हैं, वो सोचते हैं कि बस जगत में सुख प्राप्ति हो जाएगी, जबकि जगत दुख का घर है। हर मनुष्य से आशा की जाती है कि वह भगवान विष्णु के पास पहुंचने के लिए कर्तव्य को करे। जैसा कि कल महाराज जी बता रहे थे कि भगवान विष्णु की सेवा ना करना ही भी एक अपराध है। ऐसे नहीं कह सकते कि हमें तो पता नहीं था, हम तो अज्ञान में चले गए, नहीं, नहीं करने पर भी दंड मिलेगा। जैसे ड्राइवर अगर गाड़ी ठीक से ना चलाए तो उसको दंड मिलेगा। अन्य लोग ड्राइव गाड़ी चलाएं या ना चलाएं उससे कोई दंड नहीं मिलता, लेकिन ड्राइवर को गाड़ी चलानी चाहिए, ठीक प्रकार से चलानी चाहिए। उसी प्रकार से जानवर की योनि में कोई धर्म अधर्म का विचार नहीं होता है, लेकिन इंसान को भगवान की सेवा करनी ही है, करनी है, और नहीं करने पर दंड प्राप्त होता है। ये बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। अतएव यमराज यमदूतों को परामर्श देते हैं कि वे उन्हीं लोगों को उनके पास लाएं जिन्होंने भगवान विष्णु के प्रति अपने कर्तव्य बुला दिए हैं। अकृत विष्णु कृत्या, कोई भी कार्य भगवान कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए नहीं किया है तो यह है टिकट नरक का। जो विष्णु कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं करता, जो विष्णु के अर्चा विग्रह को शीश नहीं झुकाता तथा जो भगवान विष्णु के चरण कमलों का स्मरण नहीं करता, वह यमराज द्वारा दंडनीय है। यानी कि कोई आप समझ सकते हैं, स्पष्ट है कि इस प्रकार के कृत्य भगवान के लिए नहीं किए हैं तो दंड प्राप्त होगा। ये नहीं कह सकता कि हमें तो पता नहीं था, जैसे गाड़ी चलाते समय व्यक्ति का चालान होता है और वो कहे हमें तो ये रूल पता नहीं था, तो कहेंगे कि गाड़ी चला क्यों रहे। इसीलिए समझना चाहिए कि मानव जीवन बहुत खतरनाक है, क्योंकि अपेक्षा बहुत बढ़ जाती है हमसे, हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम धर्म को समझें और धर्म के अनुसार कार्य करें। इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। संक्षेप में सारे अवैष्णव यमराज द्वारा दंडनीय है। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य बड़ा स्पष्ट है, जितना मैं व्याख्या करने का प्रयास कर सकता था मैंने किया। अब हम इसी श्लोक पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका को देख रहे हैं, और बड़ी रोचक टीका है और बड़ा विनोदपूर्ण टीका भी है। पहली लाइन बड़ी खतरनाक है। क्यों खतरनाक है, जरा सुनिए। वो कहते हैं, सत वो है जिसने भगवान का नाम केवल एक बार भी उच्चारण किया। तो वैष्णव अपराध की व्याख्या बहुत व्यापक हो गई। एक बार कृष्ण बोलने वाला, हमारे सिक्योरिटी भी हरे कृष्ण बोलते हैं तो वह भी वैष्णव, और भगवान हरि का एक अर्थ वंशीधर जी बताते हैं 6.11.24 में, नहीं हाँ 6.11.24 की टीका में, कि जो व्यक्ति नाम उच्चारण मात्र करता है उसके प्रति भगवान की ये बुद्धि होती है कि व्यक्ति मेरा। तब बताइए कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान का नाम लगातार उच्चारण कर रहा है उसके प्रति अगर हम कोई अपराध करते हैं तो भगवान की हमारे प्रति क्या बुद्धि होगी। तो हरि नाम के साथ साथ हमें बस सतर्क रहना चाहिए कि वैष्णव कौन है। एक बार नाम उच्चारण करने वाला भी वैष्णव है, आचार्य जी बता रहे हैं, एक चीज ये सीखनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि वो एक बार भी जीवन में किसी ने नाम उच्चारण किया वो भक्त है, उसके अलावा लेके आओ। तो मैं एक बार हमारे प्रभु जी सनक सनातन प्रभु को पूछ रहा था कि जर्मनी में कोई भगवान का नाम लेते हैं? कहते हैं हाँ, वहाँ मक्खन का एक एडवर्टाइजमेंट है, उसमें बोलते हैं रामा, ऐसे करके इनडायरेक्टली राम का नाम आ जाता है मक्खन का एडवर्टाइजमेंट, लेकिन उसमें राम शब्द आ जाता है। तो भगवान बड़े चतुर हैं, और आप लोग सब जानते हैं किस प्रकार से मुसलमान हराम खोर बोलते हैं, तो उनको भी भगवान वैष्णव मानते हैं। कितनी अद्भुत बात है। शास्त्र सुन करके हमारे भक्ति के जीवन में बड़ा रिफाइनमेंट आता है, तो हमें लगता है ये तो भक्त नहीं, ये तो बस 16 ही माला करता है, यो भक्त नहीं, वो तो 8 ही करता है, अरे वो तो 4 ही करता है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, एक बार जीवन में बोला है, फिर बताइए कैसा बर्ताव करना चाहिए हमें वैष्णव से। और एक बार बोलने वाला तुरंत सदाचार भी नहीं पालन करता, लेकिन उसका सम्मान करना चाहिए। और रूप गोस्वामी जी इस बात को बोलते हैं, कृष्णे तो यस गिरितम मनसाद्रियता, जो नाम उच्चारण कर रहा है अपनी वाणी से उसको मन से कम सम्मान करना चाहिए। तो मन से आप सम्मान कर सकते हैं, वाणी से गाली दे सकते हैं ना, ऐसा हो सकता है? तो आप ये नहीं कह सकते भाई साहब मैं आपको अपमान नहीं कर रहा हूँ, आपका सम्मान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मन से सम्मान कर रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ, लेकिन बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। तो एक पहली लाइन बहुत डरावनी है कि एक नाम उच्चारण करने वाला भी वैष्णव है, तो बड़े खतरनाक लोगों के संग हम रह रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को भगवान अपना मान रहे हैं और हमने गड़बड़ करी तो हम हमें क्या मानेंगे उनको पता नहीं। जब यमराज जी डर रहे हैं तो हमें कितना डरना चाहिए, सतर्क करना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए, हाँ अब मान लीजिए जमदूत कहें महाराज जी कुछ लोग गूंगे होते हैं, जैसे हमारा जो टॉयलेट क्लीनर उसका नाम ही गूंगा है, बेचारा बोल नहीं पाता। अब कोई चींटी मर गई तो गाँव उसको नरक लेके नरक में आना पड़ेगा, तो कहते हैं नहीं, चेतस च न स्मरति यत् चरणारविंद। ठीक है, गूंगा है तो कम से कम भगवान से कम स्मरण मन से तो कर सकता है। हमने देखा कई बार वो मंदिर आता है और मंगल आरती में आता है, भगवान का दर्शन करता है। तो यानी कि अगर जीव सक्रिय नहीं भी है तो भगवान के मन से स्मरण कर ले तो भी तुम उसको नहीं ला सकते, उसको वो वैष्णव माने। तो फिर मान लीजिए वो प्रश्न करें, सरकार कभी कभी लोग पागल हो जाते, स्मरण नहीं कर पाते, दिमाग विक्षिप्त हो जाता है, तो कह रहे हैं कि ठीक है अगर कोई पागल है, बुद्धि ठीक नहीं है, तो भी उसको जबरदस्ती कृष्ण के सामने लेटा दो। कृष्ण को लक्षित करके अगर उसने प्रणाम कर दिया तब भी तुम उसको नहीं लेके आ सकते। तो आप इसे देख सकते हैं कि भक्ति की क्रियाओं की शक्ति कितनी अधिक है। किसी व्यक्ति के या किसी भी व्यक्ति के जीव से नाम टकरा रहा है, ये कोई साधारण बात नहीं है, वो व्यक्ति साधारण नहीं है। यमराज जी के ज्यूरिसडिक्शन कहना चाहिए, अधिकार क्षेत्र से तुरंत बाहर चला गया, भले ही वो उनको बाह्य रूप से सामान्य व्यक्ति दिखाई पड़ रहा हो। नाम जापक भगवान को प्रणाम करने वाला या भगवान का स्मरण करने वाला कभी भी एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, बाहर जाए कैसा भी लग रहा वो सम्माननीय है। यमराज जी के द्वारा सम्माननीय है तो हमारे लिए द्वारा कितना सम्माननीय होना चाहिए। ठीक है, और वो कहते हैं कि एकदा शब्द सभी के संग लगना चाहिए, मतलब एक बार नाम कर दिया या एक बार प्रणाम कर लिया या एक बार भगवान का स्मरण किया। इसको बात को सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं कि तुम आश्चर्यचकित मत हो कि अघासुर को सारूप प्राप्त हो गया, क्योंकि एक बार भी कोई व्यक्ति जबरदस्ती भगवान के रूप को अपने मन में ले आता है तो उसको भगवान सारूप देते हैं। कितना फायदा है हम लोग को रोज मंगल आरती जाने का, कितना फायदा है। अंग प्रतिमा करके एक श्लोक आता है, एक बार भी भगवान के रूप को अपने मन में ले आया तो भगवान को सारूप देते हैं। तो ये एकदा शब्द जो है वो सभी के संग लगेगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को लाओ जिसने अपने कर्मों के संग, अपने कृत्यों के संग, या मतलब प्रमुख रूप से भगवान विष्णु की भक्ति ना की हो, कोई कृत्य ना किया हो, और या फिर मुख्य रूप से भक्ति ना की हो। और एक बार का अर्थ कहते हैं कि जीवन में एक बार हो सकता है, एक वर्ष में एक बार हो सकता है, और दिन में एक बार हो सकता है, लेकिन वास्तविक अर्थ मैंने महाराज श्री के मुख से सुना था कि वास्तविक अर्थ है जीवन में एक बार। हमने कई बार सुना है कि एक बार कृष्ण बोलने का जितना लाभ है उतने पाप व्यक्ति पापी कर नहीं सकता है। कैसे समझेंगे, सिद्ध स्वामी जी कहते हैं मान लीजिए इस रूम में अंधेरा है करोड़ों साल से, तो जब आप लाइट जला देंगे तो अंधेरा ये नहीं कह सकता कि मैं करोड़ों साल से रह रहा हूं यहाँ पे तो अब यहाँ पे यहाँ से जाऊंगा। अनंत जन्मों के पाप पहली बार भी, जब हमने पहली बार हरे कृष्णा बोला था तभी समाप्त हो गया था। बाकी जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो भक्ति बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इसको भी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने समझाया है कि जब उसने यद व्याज हारा, क्योंकि कोई टाइम गैप नहीं बताया जा रहा है, यद मतलब जब, यद व्याज हारा जब उसने पहली बार नाम बोला था तभी सारे पाप ध्वस्त हो गए थे, बाकी जितना भी वो नाम कर रहा था उससे उसकी भक्ति बढ़ रही थी। तो हम लोग नाम उच्चारण कर रहे हैं ताकि हमारी भक्ति बढ़े, और उस बढ़ी हुई भक्ति से हम भगवान के नाम रूप गुण लीला के माधुर्य का आस्वादन कर सकें, इस अविद्या का नाश कर सकें, इसलिए हरि नाम कर रहे हैं, ये समझ लेना चाहिए। श्री राजीव गोस्वामी जी की टीका बड़ी सुंदर है, वो एक बहुत सुंदर श्लोक कोट करते हैं और कहते हैं, शाठ्ये नापी नमस्कारम कुर्वतः शारंग धन्वने शत जन्मार्जितम पापम तत् क्षणादेव नश्यति। कोई व्यक्ति भगवान को दिखावा करने के लिए, शठता से धोखेबाजी के लिए भी प्रणाम करता है तो भी उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये श्लोक मैंने पढ़ा था, मैं ऑफिस में बैठा था, तुरंत भाग के गया मंदिर में और 3-4 प्रणाम कर दिया। हमने कहा दूसरों को दिखाने के लिए भी अगर आप प्रणाम कर रहे हैं तो भगवान इतने इतने दयालु हैं कि 100 जन के पाप नष्ट करते हैं। इस विष्णु कृत्यांत में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नरसिंह पुराण में कथा आती है, एक बहुत ही पापी ब्राह्मण था और बहुत हर तरह का दुराचार करता था। तो उसने एक बार एक खंडहर में 4 ब्राह्मणियों का अपहरण कर लिया उनका भोग करने के लिए। उसने कहा अब यह अंधेरे में कैसे होगा और बड़ा स्थान गंदा है, तो झाड़ू मारने लगा स्थान क्लीन करने के लिए, सफाई करने के लिए। और बोला अंधेरा है, थोड़ा दीप जला देता हूँ, तो दीपक जला दिया। इतने में एक राजा ही के राजा के सैनिक पास में थे और उन्होंने देखा कि कोई रोशनी जल रही उस खंडर में, तो आए वो समझे कि यह है दूसरे राज्य का जासूस है, उसकी गला काट दिया, उसको स्वरूप प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि वह नरसिंह देव जी का मंदिर था। बताइए कितनी दुर्दम गंदी भावना से, एकदम निकृष्ट भावना से कुछ कार्य किया, लेकिन भगवान उसको विष्णु कृत्य मान लिया। इतने भगवान जो है कृपालु, इतने उदार हैं जो कहना चाहिए। तो अगर कोई बड़ी अच्छी भावना से भगवान के मंदिर में रोज आए, कुछ सेवा करे, तो उसके उद्धार में क्या मतलब संदेह है। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर भगवान की सेवा की इतनी महिमा है, प्रणाम करने की इतनी महिमा है, तो लोग प्रणाम कर क्यों नहीं रहे? तो कह रहे हैं तत्र हेतु असतः असत्व हेतु, क्योंकि वो भौतिकतावादी हैं, उनको भगवान से कोई मतलब नहीं, इसलिए प्रणाम नहीं करते। और क्योंकि वो असत हैं, इसलिए भगवान के लिए कोई भी कार्य करने में उनको रुचि नहीं होती। खूब सारी महिमा सुन लेंगे, उसके बाद भी हरे कृष्ण नहीं करेंगे। एक सन्यासी हैं, तो उनसे एक भक्त या कोई व्यक्ति बोला कि महाराज जी आप जितना डोरेशन चाहो उतना दे दो, मैं सब दे सकता हूँ। तो महाराज ने कहा आप एक माला जप कीजिए। कहते वो नहीं कर सकता। खैर वो भगवान के लिए डोनेशन दे रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीव से किसी के नाम उच्चारण हो रहा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यह कोई सामान्य बात नहीं है। और उसके प्रमाण में कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं, सकर्ता सर्वधर्माणाम भक्तो यस्तव केशवा। जो भगवान कृष्ण का भक्त है उसने सारे धर्म कर लिए। सकर्ता सर्व पापानाम यो अभक्तस्तवाच्युता। कोई व्यक्ति बड़ा धार्मिक है लेकिन आपका भक्त नहीं है तो उसने सारे पाप ही किए हैं। बहुत बाह्य रूप से धार्मिक दिखा सकता है, लेकिन अगर विष्णु का भगवान विष्णु का भक्त नहीं है, तो कह रहे हैं सीधे ब्रह्मा जी की उक्ति है स्कंद पुराण के रेखाखंड से, रेवाखंड से, कि यह निश्चित रूप से व्यक्ति पापी है अगर वह भगवान विष्णु के लिए कोई कृत्य नहीं करता है। फिर कहते हैं पापम भवति धर्मोऽपि तवा भक्ते कृतो हरे निशेष धर्म कृता वाप्य अभक्तो नरके हरे। कि अगर हाँ कह रहे हैं कि अभक्तों के द्वारा किया धर्म तो पाप ही है, और एक अभक्त असीमित धर्म करने के बाद भी शाश्वत रूप से नरक में ही गिरता है, बड़ी ही अचिंत बातें हैं। और एक भक्त ब्रह्म हत्या भी क्यों ना किया हो वह मुक्त होता है। अब आप लोगों के मन में शायद संदेह आ रहा होगा, तो हम देख सकते हैं कि अर्जुन को भी यह भय था, गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयोम तुम भैक्षमपि हलोके, मैं गुरुओं का वध करूंगा, ब्राह्मण भी थे उनका वध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। लेकिन पाप लगा क्या? पाप नहीं लगा, क्योंकि वे भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहे। और आप जानते ही हैं जब युधिष्ठिर महाराज को बोला कि झूठ बोल दो और नहीं बोले तो उनका युद्ध का क्या कह सकते हैं, उसको रथ था वो नीचे डाउन हो गया सुनते हैं। तो वस्तुतः वास्तविक धर्म का सार यही है कि जैसा भगवान कहते हैं वैसा हमें करना चाहिए। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो ये स्कंद पुराण की युक्ति थी। और एक संबंध में एक और बात कहा जा सकता है, जैसे दुर्योधन वर्णाश्रम की दृष्टि से बढ़िया से राज्य कर रहा था, लेकिन क्योंकि भगवान के भक्तों से द्वेषी था, भगवान विष्णु के विपरीत था, कृष्ण के विपरीत था, इसलिए उसका ध्वंस हो गया सारा कुछ। तथाकथित धर्म कर्म करते हुए भी वह पूरी तरह से उसका नाश हो गया। तो इस श्लोक की हम प्रमाण भी देखते हैं श्लोक उसमें। उसके बाद पद्म पुराण में कहते हैं मन निमित्तम कृतम पापम अपि धर्माय कल्पते मामनादृत्य धर्मोपि पापम स्यान मत प्रभावत। कह रहे हैं कि जो मेरे निमित्त भगवान कृष्ण का कार्य करने के लिए कोई पाप करता है तो वह मुक्त हो जाता है। अब इसमें भी डाउट था हमने, कैसे कैसे हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि रंगनाथ टेम्पल जो है वह चोरी के पैसे से बना है। प्रभुपाद जी से इस मंदिर में जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो एक भक्त ने कहा प्रभुपाद जी काला धन है। भक्त का नाम नहीं लूंगा जो भक्त इसको लेके आए, तो प्रभुपाद कहते काला धन हो या सफेद धन हो, सब कृष्ण का धन है, लेके आओ और ये मंदिर का निर्माण हो।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वैसे हम ये नहीं कह रहे कि आप पाप करके कृष्ण के लिए सेवा कीजिए, लेकिन यहाँ लिखा है कि अगर भगवान की सेवा के लिए कदाचित भक्त को कोई पाप भी करना पड़ा तो वह भी धर्म ही है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। और क्या भगवान कहते हैं, अगर वह मेरा अनादर करता है तो उनके ही प्रभाव से वह पाप बन जाता है। तो पाप और पुण्य का निर्धारण करने वाले कृष्ण ही हैं, तो कृष्ण के लिए कोई कृत्य किया है तो हम सदा मुक्त हैं, ये बात स्थापित कर रहे हैं श्रील जीव गोस्वामी। इसमें वो कहते हैं कि इन श्लोकों से क्या स्थापित हो रहा है, स्थापित ये हो रहा है जो प्रभुपाद जी ने अपनी टीका में बताया कि वर्णाश्रम धर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है, उसमें भक्ति प्रमुख होना चाहिए। और अगर भक्ति नहीं है तो हमने श्रीमद् भागवतम से सुना है श्रम एव ही केवलम, केवल मेहनत किया कुछ नहीं मिला। या फिर जैसे हम श्रीमद् भागवत में सुनते हैं दशम स्कंद में ब्रह्मा जी की उक्ति है, ज्ञाने बहुत व्यक्ति ज्ञान का प्रयास कर रहा है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता है तो कैसा है, जैसे थोथी भूसी, भूसी का बहुत बड़ा ढेर है उसको कूट रहा है, कूटने से केवल ई सब गोल मिलेगा, ई सब गोल भूसी का पाउडर फॉर्म होता है तो ई सब गोल जरूर मिल जाएगा लेकिन उससे अधिक कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, उसकी भूख शांत नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो मुख्य बात है वो चावल का दाना, वो तो पहले ही निकल गया और जो थोड़े बहुत चावल के दाने रहते हैं वह भी उस ज्ञान के प्रयास से कूट करके पाउडर बन जाएंगे। तो इसलिए व्यक्ति को सार समझना चाहिए और सार है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले कृत्य, इससे स्थापित हो रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि भगवान का कीर्तन कहीं नहीं हो रहा, स्मरण नहीं हो रहा, प्रणाम नहीं हो रहा, इसका अर्थ ये समझ लेना चाहिए कि और कोई कृत्य भी नहीं हो रहे हो, और कोई भी कृत्य नहीं हो रहा होगा इस कारण से। ऐसे वो कह रहे हैं अकृत विष्णु कृत्यान, मतलब भगवान विष्णु के लिए कोई भी कार्य ना किया हो। इस संबंध में एक घटना है बड़ी रोचक, एक प्रभुपाद जी की शिष्या प्रवचन कर रही थी और ने एक सच्ची घटना बताई कि कैसे अनजाने में भी विष्णु कृत्य करने से भगवान भगवान के लिए व्यक्ति यमराज से बच जाता है। इस्कॉन में एक भक्त हैं स्वीडन में जो कुछ समय पहले मर गए थे, अभी ऐसे कैसे हो सकता है। तो हुआ ये कि उनके वो भक्त नहीं थे, ऐसे कहीं होटल में बैठे होंगे और भक्त लोग संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, उनको ये भी पता नहीं था कि हो क्या रहा है, उनको बड़ा अच्छा लगा और उन्हें ऐसे हाथ हिला दिया, बहुत बार लोग करते हैं संकीर्तन को देख कर। मर गए, मरने के बाद यमराज जी के पास गए तो यमराज जी ने उनका रिकॉर्ड देखा, भाई कोई पाप सॉरी कोई पाप तो बहुत किए हैं, कुछ पुण्य किए हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ इन्हें संकीर्तन जो आंदोलन था या संकीर्तन की जो पार्टी थी उसको अनुमोदन किया था, यहाँ भी बड़े अच्छे लोग हैं। कहते ठीक है वापस भेज दो। और पूछा महाराज जी ने कि भाई क्या करोगे जाकर, कहता अभी हरे कृष्ण का डिवोटी बनूंगा, तो अभी वो 16 माला जाप कर। तो हम देख सकते हैं कि अनजाने में भी किसी तरह इस भगवत धर्म का अनुमोदन किया है तो वो सर पापों से मुक्त हो जाते, अनजाने में भी। अब बड़ा सुंदर श्लोक को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं जिह्वा न वक्ति, जिसकी जिह्वा नहीं बोलती, इससे यह प्रतीत होता है कि जीव अपने आप बोल रही है लगता है। चेतस्य न स्मरति, ऐसा लग रहा है कि मन अपने आप स्मरण कर रहा है, मन एक अलग कर्ता की तरह है। और वो कहते हैं जिसने कभी प्रणाम नहीं किया, न नमति, तो कह रहे हैं कर्ता के रूप में विभिन्न अंगों का उल्लेख करते हुए यह संकेत करता है कि यदि व्यक्ति की इच्छा ना भी हो तो भी जप करना चाहिए। ये समझ पा रहे हैं, जिह्वा वक्ति मतलब जिह्वा एक अलग से करता होगा, इस प्रकार से बोल करके वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए उसकी इच्छा नहीं भी है तो भी बोलना चाहिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई बार भक्त लोग बोलते हैं हमारा मन नहीं लगता, तो हमारा मन लगे या ना लगे लेकिन भगवान का हमारे पर मन लगा हुआ है, वह हमारे कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छी बात। दूसरा वह कमेंट करते हैं कि यहाँ पे लिखा है तत्चरणारविंदम, वो कहते हैं कि यह यमराज जी की भक्ति को इंगित करता है, वह दास भाव में हैं तो भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि केवल चरण कमल का स्मरण करेंगे तभी मुक्त होगा। मान लो भगवान के चेहरे का स्मरण किया तो या जाएंगे क्या यमराज के पास, या भगवान के हाथ को देख रहा है कोई स्मरण कर रहा है, या भगवान के कान को स्मरण कर रहा है, उपलक्षण से चरण कमल के उपलक्षण से कोई भी अंग का भगवान का स्मरण करता है तो वह व्यक्ति यमराज जी के पास नहीं जा सकता है। एक बात छोटा सा कमेंट ये है, भगवान विष्णु भगवान कपिलदेव कहते हैं जब भगवान को हम दर्शन करते हैं तो हमें एक एक अंग पे ध्यान करना चाहिए, पूर्णता में भगवान को नहीं देखना चाहिए। चरण कमल को फोकस करें, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ें, फिर भगवान की नाभि को देखें। स्मरण कर सकते हैं इसी नाभि से पूरे जगत की सृष्टि हुई है, उसी जगत में मैं भी हूँ। भगवान के हाथों को देखें, एक साइड पॉइंट है, लेकिन भगवान को देखने की रीति यही है कि हम एक एक अंग पे भगवान को देखें, ना कि पूरी तरह से संपूर्ण रूप में भगवान को देखें। और तीसरा कमेंट बड़ा सुंदर है कि अपने सेवकों की आज्ञा दे रहे हैं कि अब भक्तों को लाना है, मतलब भक्तों को कभी नहीं लाना है, क्योंकि अभक्तों को लाने की आज्ञा अंतिम है। यहाँ बोल रहे हैं कि उनको लेके आओ, उसके बाद ये नहीं बोल रहे हैं कि भक्त कुछ गड़बड़ करके, वो भक्त जो कुछ गड़बड़ करते तो उसको लेके आओ। केवल अभक्तों को लाना है, बस यही उनका फाइनल डिसीजन है, उसके बाद कोई डिसीजन नहीं है। जैसे हाई कोर्ट में कोई आज्ञा दे दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ और आज्ञा दे सकती है, तो अपने कोर्ट में आदेश प्रस्तुत कर रहे हैं कि केवल अभक्तों को लाना है। और फिर से याद दिलाऊंगा, भक्त कौन है? जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम उच्चारण किया। जब हम लोग किताब वितरण कभी कभी करते हैं तो लोगों को जरूर बोलता हूँ, क्या आप एक स्पेशल मंत्र जानना चाहेंगे? भारत में तो जरूर जानना चाहते हैं कोई स्पेशल मंत्र, तो उसको दिखा दिखा के बोलते हैं, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार तो कम से कम जीवन में हरे कृष्ण मंत्र बुलवा देना चाहिए। हमारे मंदिर में बहुत अच्छी सेवा करते हैं भक्त लोग, जो लोग अपने म्यूजियम में, म्यूजियम ने प्रभुपाद जी की समाधि में भक्तों को जप कराते हैं, और जो नए लोग आते हैं तो वो भी खुद नहीं जान पा रहे हैं, वो भक्त भी नहीं जान पा रहे हैं कि कितनी बड़ी कृपा उस व्यक्ति के ऊपर कर रहे हैं। मैं लखनऊ से लौट रहा था प्रचार कार्य के बाद, तो हम लोग की गाड़ी जा रही थी, और रास्ते में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए थे एक ढाबे के, फिर मैंने कहा चलो रुक करके यहीं प्रसाद पाते हैं। प्रसाद हमारे पास था भगवान की, मेरे कहा से रूणी नंदन टू भी शायद हमारे साथ थे, मैं याद नहीं, हमारे साथ नहीं थे, कोई और भक्त भी थे। तो उस व्यक्ति के पास गए, उसने बढ़िया से सारी व्यवस्था करी, प्लेट दिया, ये दिया। हमने कहा क्यों सेवा कर रहा है? तो फिर बातचीत हुई तो मालूम चला कि वो यहाँ पे आया था और उसने एक माला जप किया था। देखिए भगवान किस प्रकार से कृपा करते। हम लोग गाड़ी बड़ी तेजी से जा रही थी, हम लोग वापस रोके, उसके यहाँ रुके, उसको भगवत गीता भी दी। तो एक बार हरे कृष्णा बोल दिया, एक बार महामंत्र कह दिया, अब वह यमराज जी के जुरिस्डिक्शन से बाहर चला गया। कितना सुंदर बात है। उसको मैं उदाहरण की तरह समझाता हूँ, ये मेरी कार है, अब मैं असत मतलब मैं उल्टी दिशा में जा रहा हूँ भगवान की, अगर मैंने कृष्ण बोल दिया तो ऐसे हो गया हूँ, अब मैं चलूंगा तो किधर जा रहा हूँ? कृष्ण की तरफ जा रहा हूँ। भले ही कृष्ण से बहुत दूर हूँ लेकिन जा कृष्ण की तरफ रहा हूँ। और इसको हम शास्त्र में सुनते हैं कि जिसने एक बार भी हरि बोला है तो उसने मुक्त होने के लिए अपनी कमर कस ली है। ये हम लोग कई बार सुनते हैं, हरि अक्षर द्वयम करके एक श्लोक आता है, तो ये हम सुनते हैं। अब इसका प्रमाण भी हम लोग सुन चुके हैं, 6:1-19 में, सकृन मनः कृष्ण पदार विंद योर निवेशितम तद गुणराग यरिह नाते यमं पाश व्रतश्च तद्वटान स्वप्ने भी पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृतः। अर्थ बड़ा सुंदर है कि किसी व्यक्ति ने भगवान कृष्ण को बहुत पूरी तरह से समझा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार भी सकृत, यहाँ पे भी शब्द आया है सकृत, यहाँ पे भी आया, एक बार भी भगवान के चरण कमलों में इसने शरणागति की है और भगवान के नाम रूप गुण से किसी भी तरह से वो आकर्षित हो गया। जैसे हमारे एक बार मैं मंदिर में शाम को बैठा था कीर्तन में, मैंने कहा चलो वापस चलते हैं, तो फिर पता नहीं कुछ रुक करके मैं अंदर आ गया, तो हमारी बुआ जी आई थी लखनऊ से, और वो बड़ी उनके जो लड़का था बहुत आश्चर्यचकित हो गया, ओह ये क्या एनर्जी है यहाँ पे, उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, हरे कृष्णा हो रहा था, क्या एनर्जी है। तो उसी दिन वही यमराज जी के द्वार से बाहर चला, वो उसने कुछ अप्रिशिएट किया। हमारे एक भक्त हैं जो बहुत अच्छे प्रचारक हैं, भक्त हैं, वो हमको बता रहे थे किस प्रकार से वो लंदन में थे, रात में 12 बजे घूम रहे थे और संकीर्तन आंदोलन, भक्तों ने भी सोचा रात में उस खराब जगह बहुत अच्छे लोग आते हैं, मतलब खराब लोग आते हैं, चलो हम वहीं संकीर्तन करते हैं, तो और वह संकीर्तन करने लगे और उन्होंने भी देखा ये क्या चीज़ है। अब देखिए वो आज भक्त बन गए हैं और बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं। तो मेन बात है प्रभुपाद जी उसको बोलते हैं भगवान को किस तरह सराह लिया, कुछ सेवा कर दी, तो व्यक्ति वह अब यमराज के पास से मुक्त हो जाएगा। तो किसी में वो कह रहे हैं कि वो हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाएगा और सपने में भी यमराज और उसके उनके जो भटान हैं, उनके सेवक हैं, उनको दर्शन नहीं दे सकते। तो जब देखिए जब यमराज जी भक्तों का नाम जापकों का सम्मान करते हैं तो हमें कितना सम्मान करना चाहिए। दूसरा, ये इतनी शक्तिशाली प्रोसेस है, इतना ज़्यादा इसमें भगवान ने अपनी शक्ति निहित की हुई है, तो हमें कितनी गंभीरता से हरिनाम करना चाहिए। कल मैं गीता क्लास में चर्चा कर रहा था कि जीवन में आप कभी नहीं सुनोगे कि इस्कॉन में कोई पुजारी आरती कर रहा है और व्हाट्सएप चेक कर रहा है। क्यों भाई, कोई कंट्रोवर्सी आई आज तक कहीं देखे आप? अब हम लोग कलयुग में हैं, इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि नाम जाप करना ये भगवान की सेवा ही नहीं है, सर्वश्रेष्ठ सेवा है, ये भगवान की पूजा है। क्या प्रमाण है? मध्वाचार्य जी कहते हैं, द्वापरेर जनेर विष्णु पंचरात्रेस्तु केवले, कलयुग तो नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। द्वापर युग में लोग पंचरात्रि विधि से भगवान की पूजा करते थे, कलयुग तू नाम मात्रेण, केवल नाम के उच्चारण मात्र से पूज्यते भगवान हरि, भगवान हरि की पूजा होती है। तो हम केवल जाप नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूजा कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या हम लोग ने कभी आज तक किसी पुजारी को आरती करते हुए सोते हुए देखा है? जिन गृहस्थ भक्तों की शादी हुई होगी, ऑब्वियसली शादी हुई होगी, तो आपकी शादी के यज्ञ में अगर पंडित जी सो गए होते तो क्या आप दक्षिणा देते? और हम लोग रोज खूब मजे से सोते हैं, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं। याद है ना, लोकनाथ महाराज जी बता रहे थे कि यज्ञ नाम जप यज्ञस्मी, हम पंडित जी बन गए, यज्ञ कर रहे हैं और इससे पहले कि आहुति यहां तक पहुंचती हमारे समाधि लग जाती है। इन सारी चीजों से सीखना चाहिए कि कितना शक्तिशाली प्रोसेस है। जब भगवान ने अपनी सारी शक्ति लगा दी है नाम में, तो हमें भी अपनी सारी शक्ति लगानी चाहिए नाम उच्चारण में। ऐसा नहीं मैं कोई डांट रहा हूं, लेकिन एक ईगरनेस, एक आग्रह होना चाहिए नाम उच्चारण करने में, एक तन्मयता होनी चाहिए, तब हम उस रस का अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद यमराज जी कह रहे हैं, कोट करते हैं नरसिंह पुराण से, अहम मरगणांचितेन धात्रायम इति लोक हिताहिते नियुक्तः हरि गुरु विमुखान प्रशास्मी मर्यान हरि चरणतान नमस्करोमि। कहते मैं यम उन भगवान के द्वारा नियोजित हूँ लोगों को दंड और पुरस्कार देने में, जो भगवान देवताओं के द्वारा भी पूजित किए जाते हैं, और मैं किन लोगों को दंड देता हूँ जो हरि यानी भगवान कृष्ण और गुरु यानी वैष्णव के प्रति विमुख हैं। लेकिन जो भगवान के हरि, भगवान श्री हरि के चरणों को नमस्कार करते हैं, उनको नमस्करोमि, मैं स्वयं नमस्कार करता हूं। कितने सुंदर सुंदर कोटेशन है जिससे वैष्णव और भगवान विष्णु के लिए कृत्य करने वालों के प्रति हमारे सम्मान भावना जगना चाहिए। फिर कहते हैं, न ब्रह्मा न शिवा न अग्नि न शिवाग्नि इंद्र नाहम नान्य दिवौकस शक्तास्तु निग्रहम कर्तु वैष्णवानाम महात्मनाम। ब्रह्मा जी, शिव जी, अग्नि, इंद्र और मैं, ये स्कंद पुराण से स्कंद जी बोल रहे हैं, कोई भी देवता भक्त को दंड नहीं दे सकता। तो हमारे अंदर कितनी भावना है कि उस भक्त को मैं पनिशमेंट दूंगा? क्या योग्यता है हमारे पास किसी भक्त को दंड देने की? भगवान देखेंगे, उनके गुरु महाराज देखेंगे, हमारी कोई योग्यता नहीं है। किसी भी भक्त के प्रति अगर हम द्वेष करते हैं तो नाम की कृपा हमको प्राप्त नहीं होगी। परम पूज्य प्रहलादानंद महाराज जी यहीं पे क्लास बैठ के दे रहे थे, बहुत अच्छा बात बोले कि देखिए असुर और देवता हमारे हृदय में ही है, सब जानते हैं, बुरी इच्छाएं भी हैं और अच्छी इच्छाएं भी हैं। तो अगर हम लोग वैष्णव प्राप्त करते हैं तो हमारे हृदय के असुर जो है वो बड़े प्रबल हो जाएंगे और हमको भोगों में प्रवृत्त कर देंगे, और अगर हम वैष्णव की सेवा करते हैं तो हमारे हृदय में जो शुभ वासनाएं हैं उनका निर्माण हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, चार कुमारों के प्रति अपराध करने के कारण जय और विजय असुर भाव से ग्रसित हो गए, और यही प्रहलाद महाराज उसी असुर कुल में जन्म लिए, लेकिन नारद मुनि की सेवा करने के द्वारा कितनी शुभ वासना से भगवान कृष्ण के प्रेम से भर गए। तो हमें इन सारे श्लोकों से सीखना चाहिए कि जो नाम जप कर रहे हैं वह हमारे सम्माननीय है, वो यमराज जी के सम्माननीय है, हम लोग यमराज जी नहीं हैं, यमराज जी महाभागवत हैं, हम लोग महाभागवत नहीं हैं, वह बहुत सतर्क हैं, हम क्यों असतर्क रहें? भगवान के भक्तों का सम्मान करें। श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी बहुत सुंदर कमेंट करते हैं इस संबंध में कि नाम रुचि, वैष्णव सेवा और जीव दया ये आपस में संबंधित हैं। अगर हम चाहते हैं कि नाम में रुचि प्राप्त हो तो वैष्णव की सेवा कीजिए, किसी भी तरह से, केवल प्रसाद से ही वैष्णव संतुष्ट नहीं होते, उससे सबसे अधिक संतुष्ट होते हैं, लेकिन बहुत उससे सभी लोग संतुष्ट होते हैं, लेकिन वाणी के द्वारा हम बहुत सेवा कर सकते हैं। किसी भी भक्त को अगर हम किसी भी तरह से उद्वेग देते हैं तो हमारी भक्ति में डाउन हो जाएगा, भक्ति डाउन होती है, और किसी तरह से हम अपनी वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा, किसी भी तरह से उनकी मदद करते हैं तो हमारी भक्ति में बहुत उत्थान होगा। ये सारी चीज़ें हमें श्लोक से सीखने को मिलती हैं। कोई किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर कहेंगे. एनी क्वेश्चंस? ओके, प्रभु जी को माइक दे सकते हैं, आप प्रश्न कर सकते हैं.
जैसा कि नाम की महिमा गाई जा रही है और सुन ले रहे हैं वो, और बताया जा रहा है कि एक दफा भी जो कृष्ण का नाम लिया है तो वो जन्माष्टमी, तो बाकी हम भागवतों में देखते हैं कि जब भरत महाराज भाव स्तर तक पहुँच गए थे, भाव भक्ति के स्तर तक पहुँच गए थे, लेकिन अंत काल में हिरण के बच्चे में आसक्ति हो जाने के कारण उनको हिरण का शरीर प्राप्त हुआ, तो वो इसकी जुरिस्डिक्शन में रहे और हिरण का शरीर उनको कैसे प्राप्त हो गया?
6.2.9-10 की टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि एक नाम से ही व्यक्ति पार हो जाता है. कभी कभी भरत महाराज का उदाहरण लेकर के उस भक्त विशेष में, उस भक्त के हृदय में एक विशिष्ट प्रकार के प्रेम का आस्वादन करने की इच्छा होती है तो भगवान उसकी लालसा को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं. ये एक्सप्लेनेशन सीधा सीधा है, मैं आपको बाद में क्लास के दिखा भी सकता हूँ कि भरत महाराज एक विशेष केस हैं. क्योंकि आप ये कहेंगे कि अजामिल श्रेष्ठ था कि भरत महाराज श्रेष्ठ थे, तो स्पष्ट भरत महाराज ज़्यादा रिकॉर्ड अच्छा था. तो क्यों? क्योंकि वह जैसा आचार्य बताते हैं कि विशिष्ट प्रकार के प्रेम का आस्वादन करना चाहते थे, इसलिए उनकी लालसा को बढ़ाने के लिए भगवान ने ऐसा किया. तो ये स्वाभाविक है कि भगवान के ज्यूरिस्डिक्शन में ये भक्त रहते हैं. यमराज जी का तो कोई इसमें प्रश्न नहीं होता, यमराज जी तो है इसमें आते ही नहीं. और कोई प्रश्न है? ओके, इस पर जी
मुझे आपने बताया कि शुरुआत में बताया कि कलयुग होता है, कलयुग नहीं, और आज के आधुनिक जो व्यवसाय है हमारे जो है वो भगवान को साथ ही आपने आगे भी जानकर दिया कि दुर्योधन हालांकि महाराष्ट्र का विस्तार कार्यक्रम था परंतु वो भगवान को पसंद नहीं आया, और वहीं पर युधिष्ठिर महाराज ने बारे जानकर दिया कोई किसी से कोई गलत कार्य हो जाता है, जैसे श्रीरंगम मंदिर में
हाँ सही कह रहे हैं. लेकिन देखिए, मैं जब बोला था विकर्म को योग नहीं होता है, मतलब अब कोई पाप करके भगवान की सेवा करे ये सामान्यता नहीं होता है. ऐसा हम नहीं कह सकते कि कर्म, हम एक कह सकते हैं पापाचरण करके हम अब कुछ धन इकट्ठा कर रहे हैं और उसको भगवान की सेवा में लगाएं, ये नॉर्मली नहीं होता. नॉर्मली इसको ऐसा उपदेश शास्त्र नहीं करता है, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है. कोई भक्त किस भावना से सेवा कर रहा है, जैसे वो जिन्होंने रंगनाथ टेम्पल बनाया वो खुद पाप नहीं किए, उनके चेले जानते हैं, वो चेले जो थे वो सब डकैत थे, वह खुद सिंपल झोपड़ी में ही रहते थे. जैसे प्रभुपाद जी के केस में भी आप देख सकते हैं. तो एक महान आचार्य कभी जैसा कर सकते वैसे सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता. देखिए ना, जैसे हरिदास ठाकुर जी ने लखा हीरो को बोला कि तुमने जितना भी पाप का धन कमाया है वो ब्राह्मण वैष्णव को दान कर दो, क्योंकि जो पापमय धन होता है उससे हमारी बुद्धि नष्ट होती है. तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ गलत गलत कार्य करेंगे और करते रहेंगे और हम भगवान की भक्ति में स्थिर रहेंगे. कदाचित किस भगवान की सेवा के लिए कोई पाप करना पड़े तो वह भी धर्म है, ये कहना चाहता था. ये नहीं है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं ना, सुनते हैं ना कि ये शाम तो अंत गतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम, तो जो पुण्यात्मक व्यक्ति है वो भक्ति में स्थिर रह सकता है. लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में अगर व्यक्ति को कुछ गलत कार्य करना पड़ रहा है भगवान की सेवा के लिए तो वह भी धर्म है, जब तो हम सामने शास्त्र की बात सुनते हैं. और कोई प्रश्न है? हाँ पर कर्म योग नहीं है. देखिए विकर्म योग जैसे हाँ विकर्म है, और इस चीज को भगवान स्वयं ऋषभदेव जी बोलते हैं नूनम प्रमत. हाँ नहीं है. विकर्म वो होता है जो वेदों के आदेश के विरुद्ध किया जाए. विकर्म मत नहीं, देखिए
कर्म की डेफिनेशन आप नहीं दे सकते या मैं नहीं दे सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट रूप से बताते हैं, कर्म अर्थात वेदों के अनुसार जो वर्णित कर्म है वह कर्म, विकर्म अर्थात वेदों के विरुद्ध कर्म यानी कि जो पापाचरण है पाप होता है, और अकर्म अर्थात वह कर्म जो कृष्ण को समर्पित होता है जिसका कोई कर्म फल नहीं लगता। तो जैसे शादी करना ये वेदों में वर्णित है, ये कर्म है, लेकिन अवैध संग करना ये विकर्म है। तो अगर कोई शादी कर रहा है तो वेदों में वर्णन है कि हाँ कोई पत्नी स्वीकार कर सकता है और धर्म का अनुसार उनका संग रह सकते हैं, लेकिन कोई अगर किसी वैश्या का संग कर रहा है जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे जामिल का, तो वह विकर्म है और इसको भगवान अनुमोदन नहीं कर सकते। इसलिए मेरे मत और आपके मत या किसी के मत की कोई वैल्यू नहीं है, भगवान की हमें आज्ञा को सुनना चाहिए। ठीक है, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।